मैं यहाँ ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आपकी दुआएं सुनी गई थी और इबादत वैसी ही हुई जैसी कई साल पहले मेरी खिदमत के आगाज में होती थी। हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि लोगों को बिठा सकते, और हमने मैदान और बाकी जगह भी इस्तेमाल की, और वहाँ 3 बजे ही इतने लोग आ जाते थे कि वो जगह भर जाती थी। वो दरवाजे बंद कर देते थे ताकि लोग अंदर ना आ सकें, और हम 7 बजे तक भी वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, समझे। बस वहाँ हर तरफ से हजारों लोग जमा हो जाते थे बस। और मैंने आखिरी 5 रातें इबादत करवाई थी और फक्त कलाम के चौगिर्द तामीर करता रहा, और इस बात का एहसास होना शुरू हो गया था कि कलाम में कितनी कुदरत है, समझे, क्योंकि कलाम खुदा है, समझे। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। अब इब्रानियों 4 में लिखा है कि खुदा का कलाम हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, समझे। खुदा का कलाम तेज है, यहाँ तक के बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। देखें, यही कुछ खुदा का कलाम है। फिर हम वहाँ से सुकून भी हासिल कर सकते हैं जहाँ ये नेमत है, और कलाम खुद मसीह है, और कलाम खुद हमारे अंदर आता है और दिलों के ख्यालों को परखता है, और आप ये देख चुके हैं, समझे। ये शानदार बात है। फिर आपने देखा उसने क्या किया और किस तरह हमें बरकत अता की, और फिर और मैंने महसूस किया उस इमारत के अंदर 4 रातों तक कलाम किया गया, और लोग आराम से बैठकर खामोशी से सुनते रहे, और पाकरू ने सामीन से लोगों को बुलाया और काम किए। और फिर आखिरी शाम को इतवार की सपहर को मैंने अमेरिका की एक सबसे बड़ी शिफाया कतार को देखा जो मैंने कभी देखी है, समझे। वो थे, मैंने बिली को 100 कार्ड के साथ, और जैन को 100 कार्ड के साथ, और लियो को 100 कार्ड के साथ, और रोय को 100 कार्ड के साथ भेजा, और तकरीबन 500 कार्ड देकर भेजा। और फिर जब उन्होंने देखा कलाम ने गिरफ्त डाल ली है और वो कुछ करेगा, तो फिर वो कलाम पर भरोसा करते हुए उन्हें प्लेटफॉर्म पर लाने लगे, और मैंने देखा मर्दों और औरतों ने अपनी बैसाखियाँ और बाकी चीजें फेंक डाली, और प्लेटफॉर्म पर आने से पहले ही वो शिफा पा गए। बस गौर करें, देखें, खुदा का कलाम जो सुनाया गया था वहाँ से आगे बढ़ा, और वो खुद इन 5 पैगामात या 4 पैगामात में से सराहियत करते हुए उनके दिलों में बैठ गया, यहाँ तक कि वो अपने पूरे दिल से इस पर ईमान लाए। फिर उन्हें फक्त एक ही काम करने की जरूरत थी कि छोटा सा राबता कायम किया जाए, देखें, ताकि कुछ हो, और ये हकीकत थी। और जैसे ही उन्होंने प्लेटफॉर्म को छुआ तो उसी घड़ी वो वहाँ शिफा पा गए, बल्कि प्लेटफॉर्म से पहले ही शिफा पा गए। मेरा ख्याल है यहाँ के सब भाई ईडी होपर को जानते हैं, क्या नहीं, क्या आप अरकनसास के लोग जानते हैं। वो मिला था, वो मेरी इब्तदाई खिदमत के इब्तदाई हिस्सों में मेरे साथ था। उसने कहा ये तो पुराने वक्तों की तरह लगता है, उसने कहा जैसे उन्होंने गुजरे सालों में किया था, और वहाँ ऐसे लोग थे जिनको कैंसर और ऐसी बीमारियाँ थी, लेकिन तंदुरुस्त होकर वापिस गए। हमारे खुदावन ने अंधे, बहरे और गूंगों को ठीक कर दिया, लोगों को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। कलाम आगे बढ़ा और ये काम कर दिया। फिर खुदावन ने मुझे एक पैगाम दिया जिसे मैं चर्च में बयान करना चाहता हूँ। जब कभी मैं वापिस आऊँगा और अगर मौका मिला तो मैं यहाँ इस चर्च में सुनाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, अब कल मुझे दोबारा रवाना होना है, बस इस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ। और ऐसा हुआ, घर पहुँचते ही अभी मैंने अपना सूटकेस भी नहीं रखा था, और कोई आ गया और मुझे बैठने का मौका भी ना मिला। देखें, मैंने अभी तक अंदर आकर अपने खानदान से बात भी नहीं की थी, समझे, और बहुत ज्यादा तनाव था। और मैं आप सबकी दुआओं का तलबगार हूँ ताकि खुदावंद मेरी मजबूती के लिए कुम्मक अता करे। अब आए अपने इस भाई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार है और चारपाई पर पड़ा है, और हम थोड़ी देर में एक शख्स आ रहा है जो हमें लोइसविल लेकर जाएगा। मैं आपको एक दुआया दरखास्त याद करवाना चाहता हूँ। एक अच्छी जवान खतून है जो कि तकरीबन 18 साल की भी नहीं है, वो जुड़वा है और स्कूल में एक मसीही लड़की की तरह रहती है, और बाकी लड़कियाँ उसके बारे में बातें करती हैं। आपको मालूम है ये 2 लड़कियाँ हैं, और वो इन्हें बताती हैं ये कैसी थी और जिंदगी का कौन सा हिस्सा इन्होंने जाया कर दिया है, और कैसे इन लड़कियों को दूसरी लड़कियों की तरह जीना चाहिए था। और एक लड़की उस तरफ मुतवज्जो हो गई और दूसरी परेशान हो गई और इस बारे में बहुत ज्यादा बुरा महसूस किया और पीछे हटती गई और दूर चली गई और काफी फिक्र करती रही। और फिर उसके जेन ने काम करना छोड़ दिया और वो एक पागलखाने में है। थोड़ी देर में क्रैंडल इंडियाना से उसके माँ बाप आ रहे हैं और कल वो इसे मेडिसन के अदारे में भेजने की कोशिश करेंगे। अब लड़की को देखें, लड़की में जिस्मानी कोई बीमारी नहीं है, उसमें जिस्मानी कोई खराबी नहीं है, वो मुकम्मल सेहतमंद है। इसकी वजाहत करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसको वाकई बयान नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? उसकी रूह भटक गई है, समझे? अब आपको उसकी रूह तक पहुंचना होगा और उसे वापस उस मकाम पर लाना होगा, समझे? वहाँ देखें, कुछ हफ्ते पहले हम यहाँ बातचीत कर रहे थे इंसानी निजाम कैसे काम करता है और आप पांच आवाज के वसीले बदन में कैसे दाखिल होते हैं, और आप इन्हें पांच रास्ते भी कह सकते हैं। इन पांच रास्तों में जमीर, तसव्वुर और बाकी हैं। इनके वसीले हम सोल में दाखिल होते हैं और फिर जब आप रूह में दाखिल हो जाते हैं तो फिर एक ही रास्ता है और वो है आजाद मर्जी, जिसकी बुनियाद पर इंसान तख्लीक किया गया था। आप इसे कबूल कर सकते हैं या आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। आप मसीह को मुनजी कबूल कर सकते हैं या उसे छोड़कर जा सकते हैं, और आप अभी तक हयात के दरख्त और मौत के दरख्त के पास खड़े हैं। हर इंसान उस दरख्त के सामने खड़ा हुआ है, वरना खुदा बेइंसाफ ठहरता है कि एक को वहाँ रखा था और फिर दूसरे को अच्छाई और बुराई का चुनाव करने के लिए मसावी हक ना दिया, और हम में से हर एक को ये मौका दिया गया है। इसी तरह इसमें यानी रूम में हम शिफा पा सकते हैं या हम शिफा नहीं पा सकते हैं। अब इसका सबब ये नहीं है कि वहाँ ये नहीं है और हमने खुदा के वसीले शिफा हासिल नहीं की है, हम करते हैं क्योंकि ये गैर मशरूत अहद है और वो हमारी शिफा पहले ही खरीद चुका है, इसलिए हमारी शिफा हमारे लिए है और हमारी है। और हम इस पर ईमान रखकर चाहे इस रास्ते को अपना लें या इस रास्ते पर ईमान ना रखें। अब सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके वसीले हम खुदा की हजूरी में चल सकते हैं। अब ये बच्ची खूबसूरत है और इसकी माँ एक अच्छी दोस्त है। मैं हो और मेरे दोस्तों में से एक है। वो एक अच्छी खातून और प्यारी लड़की थी और कटर नाजरीन खानदान से ताल्लुक रखती थी, और उसका शोहर भी अच्छा है और जिस लड़के से उसकी शादी हुई है मैं भी उसे अच्छी तरह जानता हूँ। और वो बस एक उन्होंने इन बच्चियों की परवरिश खुदावन की खिदमत के लिए की और इन्हें स्कूल में डाल दिया, और ये मसीह में मजबूत थी और कोई गलत काम नहीं करती थी। लेकिन ये हो गया, बस ये हादसा हो गया, जिस तरह मैंने कुछ लम्हे पहले मैंने माजी पर गौर किया और एक छोटे लड़के को देखा, उसकी हालत भी बिल्कुल ऐसी थी। और देखें, एक रात हम भाई राइट के घर गए और आरवेल मुकम्मल तौर पर पागलपन का शिकार हो गया था, और वो आप जानते हैं उसने मुझे अपने घर से भगाने की कोशिश की, हालांकि मैं और आरवेल अच्छे दोस्त हैं और मैं उसके वालिद की तरह हूँ और उसके माँ बाप की शादी भी मैंने की थी। और वो उछलने और चिल्लाने लगा, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, समझे? अब हमें क्या करना था? रूह की सफ में जाना था और उस लड़के की रूह को पकड़ना था, समझे? उसके छोटे दिल को गम ने घेर लिया था। वो जवान है और वो बहुत कुछ देख चुका है, और मैं उसे ठीक वापस उस मकाम पर ले आया जहाँ उसे होना चाहिए था। क्या आप समझ गए हैं? कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। अब यही कुछ आपको इसके साथ करना पड़ेगा। मैं ये देख चुका हूँ और मैं जानता हूँ ये सच है, लेकिन अब बस मेरी आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है ताकि खुदा मेरी इस लड़की को तलाश करने में मदद करे। बाहर किसी मकाम पर है और उसे वापस उसके मकाम पर लाना है। वो नहीं जानती वो कहाँ है। वो मकाम ईमान से आएगा, देखें, लेकिन वो अपने लिए ईमान नहीं रख सकती है। वो नहीं जानती वो कहाँ है, कुछ नहीं जानती, समझे? अब यहाँ हमारे ईमान की जरूरत है, और अब इसके लिए मसीह के जी उठने की कुव्वत मौजूद है जो हमें मौका फराहम करती है। और यहीं पर आपको एक तरह से खुदा का कलाम छेद कर रख देता है, और इसे कलाम की मुनादी से बढ़कर काम करना है और आगे बढ़ना है। इसी सबब से मैं बीमारों पर दुआ करने से पहले इस छोटे उनवान पर बोलना चाहता हूँ। क्या आपको वो रोया याद है ज्यादा अरसा नहीं हुआ, खुदावर ने मुझे अता की थी। आपको मालूम है मुझे दूसरी जानिब का नज़ारा करवाया था। क्या आपको वो सुबह याद है जब मैं दूसरे जहान के नज़ारे के बारे में गवाही दे रहा था? देखें, ये हकीकत थी। और फुल गोस्पल बिजनेसमैन वॉइस ने इस पर एक आर्टिकल शाया किया था और पेज की पुष्ट पर तस्वीर भी दी थी, और इसके साथ उन्होंने एक और काम भी किया था और उसके नीचे थोड़ा सा खिदमत के बारे में भी लिख दिया था। और ये एक इंटरनेशनल अखबार है जो बहुत सारी मुख्तलिफ जबानों में शाया होता है, और उन्होंने फ्रंट पेज और पहला हिस्सा रोया के लिए मखसूस कर दिया था, समझे? और मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ, और मैं चाहता हूँ आप एक लें और उसे पढ़ें और समझें। मुझे नहीं मालूम था आज सुबह कितने भाई यहाँ आएंगे, और अगर आप इसे हासिल नहीं कर पाते तो आप ऑफिस चले जाएं। उन्होंने ऑफिस में वो रखे हुए हैं और वो हमारे लिए एक बंडल तैयार रखते हैं। बस आगे बढ़े, देखें। और ये सब बातें मेरे दिल में हैं, और मैं ये सुन रहा हूँ कि आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि दरिया के पार एक अच्छा देश है। बस आए, आगे बढ़ते जाएं, जब तक वो देश हमें मिल नहीं जाता है। अब मेरा ख्याल है भाई स्ट्रेकर और बहन स्ट्रेकर के छोटे बच्चे की मखसूसियत है। बस वो बहन स्ट्रेकर, अब कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। ये छोटा सा खूबसूरत खानदान है। और बस ये लोग अफ्रीका में हमारे मिशनरी थे और हाल ही में वापस आए हैं, और इनके सारे छोटे बच्चे खूबसूरत है, और जिसे ये आज सुबह मखसूसियत की इबादत के लिए लाए हैं मैं देख रहा हूँ, ये भी वैसा ही है। टैडी कहाँ है? टैडी बेटे, क्या तुम थोड़ी देर के लिए पियानो बजाओगे? और आए, हम एक गीत, छोटा सा गीत गाते हैं। मेरा ख्याल है आपको वो छोटा गीत आता है। इन्हें अंदर लाओ, आए हम ये गाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? गुनाहों के मैदानों से इन्हें अंदर ले आओ। और यही सबब है कि हम ये गाते हैं, क्योंकि हम तमाम वालदेन यही कुछ कर सकते हैं कि इन्हें मखसूसियत के लिए लाएं। हम इन्हें खुदावंद के लिए मखसूस कर रहे हैं और इन्हें अंदर ला रहे हैं जबकि ये अभी बच्चे हैं, ताकि ये बाहर गुनाह के मैदानों में ना ठहरे। इन्हें अंदर लाओ, आए। बस टैडी, क्या तुम्हें ये आता है? अब हम इसका सिर्फ एक मिसरा गाएंगे। अगर कोई और भी है तो उसे भी अभी ले आएं। भाई स्ट्रेकर और बहन स्ट्रेकर, मेरा ख्याल है आप इस गीत का मतलब समझते हैं। इन्हें अंदर लाओ, और आपकी ये दिली ख्वाहिश है कि खोए हुओं को यस्सु के पास लाया जाए। अगर आपका ये बच्चा या कोई और बच्चा मखसूस हुए बगैर भी मर जाए तो भी नजात पा जाएगा, क्योंकि यस्सु मसीह के खून ने ये काम कलवरी पर कर दिया है। लेकिन हम ये उसकी अजीम जमीनी मसाफरत की यादगारी में करते हैं। उसने बच्चों पर अपने हाथ रखे और कहा, इन्हें मेरे पास आने दो। इसी सबब से आज सुबह आप अपने बच्चे को लाए हैं, और आप हम पर एतमाद करते हैं कि हम ईमान के साथ दुआ करें कि हम इस छोटे बच्चे और इसकी जिंदगी को खुदा के लिए मखसूस करें। इसका नाम क्या है? मैरिलन मैज। मैरिलन मैज स्ट्रेकर। इसकी उम्र कितनी है? 13 महीने। ये अफ्रीका में पैदा हुई थी, क्या ये दुरुस्त है? ठीक है, काश अगर कोई कल बाकी है तो ये छोटी बच्ची एक मिशनरी बन के वहाँ जाए और उस खेत में जाए जहाँ ये पैदा हुई थी। और ये एक खूबसूरत बच्ची है। भाई नेविल, क्या आप यहाँ आएंगे? और मैरिलन, ओ मेरे खुदाया, मैं छोटे बच्चों को हमेशा पसंद करता हूँ। क्या ये छोटी बच्ची खूबसूरत नहीं है? आप कैसी हैं? आपका क्या हाल है? आए, अपने सरों को झुकाते हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने हाथ इस पर रखें। हमारे आसमानी बाप, हम मैरिलन मैज स्ट्रेकर को तेरे हजूर लाते हैं। ये प्यारी बच्ची मिशन के मैदानों में पैदा हुई थी जब जंग अरूज पर चल रही थी। मैं इस बच्ची के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। बाइबल में वो छोटे बच्चों को तेरे पास लाए, तूने उन पर हाथ रखे और बरकत दी और कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। माँ बाप ने इसे आज हमारे हाथों में दे दिया है। हम ईमान के वसीले सीढ़ियाँ चढ़कर आगे बढ़ते हुए यकीन के साथ इसे तेरे हाथों में देते हैं। इसकी जिंदगी को बरकत दे खुदावंद, इसे लंबी जिंदगी अता कर ताकि ये खुदा की बेटी बनी रहे। ये अपनी पूरी जिंदगी तेरी खिदमत करे और इसका हर एक रेशा मसीह का खादम बना रहे। ए बाप, ये बख्श दे इसके माँ बाप, इसके छोटे बहन भाइयों को बरकत दे, इनकी ऐसी परवरिश हो ताकि ये खुदा की खिदमत के लिए एक जलाली खानदान बन जाए। ए बाप, हम मैरीलैंड मैज की जिंदगी को यीशु मसीह के नाम में तेरी खिदमत के लिए तेरे सपुर्द करते हैं। इसे और इसके बाप को और इसकी माँ को और इसके अजीजों को बरकत दे और इन्हें अपनी खिदमत के लिए लंबी और खुशहाल जिंदगी अता कर दे, यीशु के नाम में आमीन। बाय स्टेकर, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे, इस छोटी खातून पर बरकतें नाजिल हों। बेटे टैडी, आपका शुक्रिया। मैं छोटे बच्चों से प्यार करता हूँ, क्या आप नहीं? खुदावन ने जो रोया मुझे दी थी, कितनों ने वो नहीं सुनी? जिन्होंने कभी नहीं सुनी वो अपने हाथ बुलंद करें। भाई नेविल, क्या आपकी नोटबुक आपके पास है? हो सकता है अगले कुछ लम्हों में आपको इसमें से पढ़कर सुनाना पड़े, मैं इस पर ईमान रखता हूँ। अगर आप चाहें तो अभी पढ़ सकते हैं। एक सुबह का वाकया है, मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ था, मैं नींद से जागा ही था और अपने हाथ अपने सर के पीछे करके तकिए के साथ टेक लगाकर आराम कर रहा था। फिर सोचने लगा दूसरे जहान में क्या होगा, और मैंने महसूस किया अगर मेरी जिंदगी बाकी लोगों के बराबर होगी तो मैं अपनी निस्फ जिंदगी गुजार चुका हूँ, जबकि मैं इस जिंदगी के खात्मे से पहले खुदावंत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने एक आवाज को ये कहते सुना, तूने अभी आगाज ही किया है, जंग जारी रख, आगे बढ़ता जा। और इन अल्फाज पर गौर करते हुए मैंने सोचा, ये मेरा तस्वीर है कि मैंने एक आवाज सुनी है। दोबारा आवाज ने कहा, जंग जारी रख, आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा। फिर मैंने यकीन ना किया और मैंने सोचा, हो सकता है ये मेरे अपने अल्फाज हों। मैंने अपने लब दांतों में दबाए और अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सुना, आवाज दोबारा मुझसे मुखातिब हुई, बस आगे बढ़ता जा, फक्त तू ही जानता है इस रास्ते की इंतहा क्या है। ऐसा लगा मौसीकी की आवाज सुन रहा हूँ और ये पुराना मशहूर गीत था। मैं घर जाने के लिए बेताब हूँ और यीशु को देखने का मुश्ताक हूँ। मैं उन दिल सोज घंटियों की आवाज सुनना चाहता हूँ, इससे मेरी राह रोशन और खतरा दूर हो जाएगा। खुदावन, मुझे गुजरे वक्त के पर्दे के पार देखने दे। फिर उस आवाज ने कहा, क्या तू अभी पर्दे के पार देखना चाहता है? मैंने जवाब दिया, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा। फिर क्या हुआ मैं वो बयान नहीं कर सकता, मैं बदन में था या मैं बदन के बगैर था या ये तब्दीली थी, ये बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जितनी रोयाएं देखी थी ये उनसे अलग थी। मैं उस मकाम को देख सकता था जहाँ मुझे पहुँचा दिया गया था और मैं अपने आप को पीछे अपने पलंग पर लेटा हुआ भी देख सकता था। मैंने कहा, ये अजीब बात है, वहाँ बहुत ज्यादा लोग थे जो भागते हुए मेरे पास आए और पुकार कर कहा, ओ हमारा बेशकीमत भाई। सबसे पहले जवान खवातीन आई जो तकरीबन 20 साल की थीं और वो मेरे गले लगकर कहने लगी, हमारा बेशकीमत भाई। जवान मर्द अपनी भरपूर जवानी में थे जिनकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे तारीकी में तारे चमकते हैं और दांत मोतियों की तरह सफेद थे। वो मुझे गले लगाकर कहने लगे, हमारा बेशकीमत भाई। और फिर मैंने ध्यान दिया तो मैं भी दोबारा जवान हो गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बूढ़ा बदन पलंग पर पड़ा था और मेरे हाथ मेरे सर के पीछे थे। मैंने कहा, ये बात मेरी अकल से बालातर है। और जिस मकाम पर मैं पहुंच गया था जब मैंने उसे पहचानने की कोशिश की तो वहाँ माजी या मुस्तकबिल नहीं था, वहाँ कोई थकावट नहीं थी। खूबसूरत खवातीन थी जो शायद मैंने कभी देखी है, उनकी एक बड़ी भीड़ मुझे गले लगा रही थी। मैं जानता हूँ वहाँ एक अजीम मोहब्बत का एहसास था जो पूरी तरह मुझ पर छाया हुआ था, लेकिन इंसानी रवैये में जिस्मानी कशिश का वहाँ कोई एहसास नहीं था। मैंने ध्यान दिया तो उन खवातीन के बाल कमर तक लंबे थे और उनका लबास उनके पांव तक था। इसके बाद मेरी पहली बीवी होप मुझसे गले मिली और कहा, मेरा बेशकीमत भाई। फिर एक और जवान खातून मेरे गले मिली और होप मुड़ी और उस खातून के गले मिली। मैंने कहा, ये बात मेरी अकल से बाहर है, ये चीज हमारी इंसानी मोहब्बत से बिल्कुल अलग है। और मैं पलंग पर पड़े हुए उस ज़हीफ बदन में वापिस नहीं जाना चाहता था। फिर एक आवाज मुझसे मुखातिब हुई और कहा, ये वही पाक रूह है जिसकी तू मुनादी करता रहा है, ये कामिल मोहब्बत है और इसके बगैर कोई यहाँ दाखिल नहीं हो सकता है। फिर मुझे वहाँ से उठाकर एक बुलंद मकाम पर बिठा दिया गया और मेरी चारों तरफ बेशुमार आदमी और औरतें अपनी भरपूर जवानी में मौजूद थे और वो खुशी से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हो हम आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हैं, हमारे बेशकीमत भाई। मैंने सोचा कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्योंकि मैं इन्हें भी देख रहा हूँ और नीचे पलंग पर अपने बदन को भी देख रहा हूँ। उस आवाज ने मुझसे कहा, क्या तू जानता है ये बाइबल में लिखा हुआ है, नबी अपने लोगों के साथ जमा होते थे। मैंने कहा, जी हाँ मुझे याद है, ये कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन ब्रहनम खानदान में इतने लोग नहीं हैं। आवाज ने कहा, ये ब्रहनम नहीं है, ये तेरी मुनादी से बचने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें तू खुदावंद के पास लाया था। यहाँ कुछ खवातीन हैं जो जवान और हसीन हैं, और जब तू इन्हें खुदावंद के पास लाया था इनकी उम्र 90 साल थी। तअज्जुब की बात नहीं, वो पुकार रहे थे, हमारा बेशकीमत भाई। फिर सारी भीड़ एक साथ पुकार उठी, अगर आप हमें अंजील ना सुनाते तो हम यहाँ ना होते। मैंने कहा, हो यीशु कहाँ है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, वो थोड़ा सा ऊपर है, एक दिन वो तुम्हारे पास आएगा। आपको एक रहनुमा बनाकर भेजा गया था और जब खुदा आएगा तो आपकी तालीम के मुताबिक आपका इंसाफ करेगा। मैंने कहा, क्या पालूस और पतरस को भी अदालत में जाना पड़ेगा? जवाब में कहा, हाँ। मैंने कहा, मैंने वही तालीम दी है जो उन्होंने दी थी, मैं उस तालीम से आगे पीछे नहीं हुआ। उन्होंने यीशु नाम में बपतिस्मा दिया था, मैंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने पाक रूह के बपतिस्मे की तालीम दी थी, मैंने भी दी। जो कुछ उन्होंने सिखाया था मैंने भी वही कुछ सिखाया। लोग पुकार उठे, हमें ये मालूम है और हम ये जानते हैं, हम एक दिन आपके साथ जमीन पर जाएंगे। यीशु आएगा और आपकी उस तालीम के साथ जो आपने हमारे सामने पेश की थी आपकी अदालत करेगा। फिर आप हमें यीशु के आगे पेश करेंगे, इसके बाद हम हमेशा जिंदा रहने के लिए इकट्ठे जमीन पर वापस चले जाएंगे। मैंने कहा, क्या अब मुझे जमीन पर वापस जाना होगा? उन्होंने कहा, जी हाँ, लेकिन काम जारी रखें। और जब मैंने उस हसीन और शादमान मकाम से हटना शुरू किया तो जहाँ तक मैं देख सकता था लोग मुझसे गले मिलने के लिए आ रहे थे और पुकार रहे थे, हमारा बेशकीमत भाई। और फौरन मैं पलंग पर वापस आ गया। मैंने कहा, ओ खुदाया मेरी मदद कर ताकि मैं कलाम पर कभी समझौता ना करूं, मुझे कलाम में कायम रखना। खुदावन मुझे कोई परवाह नहीं कौन क्या करता है, लेकिन मुझे उस हसीन और शादमान मकाम की जानिब पढ़ना है। मैं अपनी जिंदगी में पहले से भी ज्यादा कायल हो गया हूँ कि उस मकाम में जाने के लिए कामिल मोहब्बत की जरूरत है। वहाँ हसद नहीं, वहाँ थकावट नहीं, वहाँ बीमारी और बड़ापा नहीं, वहाँ मौत नहीं थी, फक्त आला तरीन खूबसूरती और शादमानी थी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे एक तरफ रख दें और कामिल मोहब्बत हासिल करें। हर किसी से मोहब्बत करें, यहाँ तक कि अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करें, चाहे दुश्वार रास्ता हो, बिजली चमक रही हो और दुश्मन की तोपों के रुख आपकी जानिब हो। इन बातों की फिक्र ना करें, बस कामिल मोहब्बत हासिल करें। अगर आपने निजात नहीं पाई तो अभी यीशु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल कर लें। अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो अभी ले लें। अगर आपने पाक रूह का बपतिस्मा हासिल नहीं किया तो अभी कर लें। कामिल मोहब्बत को हासिल करें जो आपको उस हसीन और शादमान मकाम पर वक्त के पर्दे के पार ले जाएगी। बाय नेविल, पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया। यही मेरा ख्याल था, शायद आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा होगा। और अगर आपके पास ये किताबचा नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं। फिर पेज के नीचे दाई जानी उसने मेरी खिदमत के बारे में लिखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम आपने इस पर गौर किया है या नहीं। जब आप इसे पढ़ लेते हैं तो ये नीचे दाई जानिब है, नीचे दाई जानिब थोड़ा सा नीचे अंदराज है। अब ये अखबार आसमान के नीचे तमाम जुबानों में पूरी दुनिया में जाता है। आप देखें, ये पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। अब क्या क्या? ठीक है, आप कहते हैं, आप क्या कहेंगे भाई ब्रैनम? इससे पहले आप बीमारों के लिए दुआ करें, और इसका सबब ये है कि हम जानते हैं कि हमारी मेहनतें बेकार नहीं हैं, समझे? हम मोहब्बत और ईमान के वसीले खुदा तक रसाई हासिल कर लेंगे। ईमान हमें इस रास्ते पर लाता है, मोहब्बत हमें इसमें दाखिल कर देती है। माजरत खा हूँ। अब आपका क्या ख्याल है कि खुदा ये अब आए, अब क्या आपका ईमान इस मकाम पर पहुंच गया है? आपका क्या ख्याल है? अब आप इन तमाम कोशिशों के बारे में क्या सोचते हैं जो इस टैबरनेकल में और लोगों के इस ग्रोह में खुदा की बादशाही के लिए की जाती हैं? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की बादशाही के लिए आपके बच्चों को वजाइफ देते हैं। यहाँ बहुत सारे हैं जो खुदा की बादशाही के लिए अपने कपड़ों के बगैर चले गए। यहाँ बहुत सारे हैं जो तूफानों से गुजरे बगैर जूतों के, नंगे पांव सफर करके खुदा की बादशाही के लिए ठीक यहाँ इस टैबरनेकल में पहुँचे। क्या आप तस्वीर कर सकते हैं? एक मसव्वर एक अजीम खूबसूरत तस्वीर बनाए और जब वो शानदार बन जाए तो उसे फाड़ डाले, तो फिर उस मसव्वर के साथ कोई मसला है? क्या आप तस्वीर कर सकते हैं? एक मौसीकार एक गीत की शानदार धुन बनाता है और फिर उस धुन को खराब कर देता है, तो फिर उस मौसीकार के साथ कोई मसला है, समझे? लेकिन खुदा के साथ कोई मसला नहीं है। खुदा कोई ऐसी चीज नहीं बनाता है कि उसे खराब करके बाहर फेंक दे, क्योंकि ये उसकी बादशाही के लिए है, क्योंकि ये उसके जलाल के लिए है। हम में से हर एक इस तस्वीर और इस गीत में एक किरदार अदा करता है। हम खुदा की बादशाही के हिस्सेदार हैं, और बात ये है हमें अपना अपना किरदार अदा करना है, और जैसे ही हमें एहसास हो जाता है हम इस मकाम पर हैं, तो हमें अपनी पोजीशन के साथ अपने मकाम पर पुख्तगी से खड़े हो जाना चाहिए, और हमें मालूम है ये एक मकाम है, ये मोहब्बत में मिलता है, क्योंकि यही चीज एक तस्वीर बनाती है। देखें, जब हम ऐसी रोयाओं और ख्वाबों को देखते हैं, तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि दूसरी जानिब क्या है। मैंने इसकी ख्वाहिश की और मैंने देख लिया, उस आदमी ने उसमें लिखा था कदीम नबी कैसे ये रोयाएं देखते थे, और कैसे आज उससे भी आगे, यहाँ तक कि हम इसे समझ नहीं सकते, लेकिन खुदावन ने हमें इसमें जाने दिया ताकि देख सकें ये क्या है। अब दोस्तों, मैं सोया हुआ नहीं था, बल्कि मैं ऐसे था जैसे आप और मैं और ये चर्च है। मैं रोया में नहीं था, मैं जानता हूँ रोया क्या होती है। देखें, गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ तकरीबन एक रात में यहाँ 30 रोयाएं नाजल हुई। आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसे आप पर कितना बोझ होता है? बेशक ये आपको परेशान कर देता है। अगर आप इस तरह की इबादत में गए होते और उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होती, अगर इबादत ठीक होती या ना होती तो आपके साथ क्या होता? ये जिम्मेदारी है, आपको हर कदम, हर सवाल और हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। मीटिंग के दुरुस्त या गलत होने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर हो तो देखें फिर आपके साथ क्या होगा। और मेरे कुछ मावन जो किताबें फरोख्त करते हैं और बाकी काम करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। देखें, वो घर जाकर सो गए और उस रात चर्च में ना आए। खुदाया, ओ ये खौफनाक बात थी, लेकिन मेरी बहू लोइस एक अच्छी मसीही लड़की है, बस इबादत में जाती रही और इसी तरह 8 हफ्ते या 7 हफ्ते मुसलसल शामिल होती रही और किसी भी जिम्मेदारी के बगैर, देखें, 1 या 2 दिन अपने बिस्तर पर पड़ी रही, समझे? बिली ने भी कुछ दवाइयां कार्ड तकसीम किए और बाकी फाड़ दिए, लेकिन देखें सारा बोझ मेरे कंधों पर होता है और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत होती है, समझे? और इसके अलावा ये भी दावा किया जाता है कि रूह की तहरीक से 20 मिनट कलाम सुनाना 8 घंटे की जिस्मानी मेहनत के बराबर है, और मैं तो हर रोज 2 या 3 घंटे तक कलाम सुनाता हूँ, और कभी कभी दिन में 3 मरतबा सुनाता हूँ, समझे? और फिर एक रोया के बारे में क्या ख्याल है? एक रोया ने हमारे खुदावंद यीशु को जिस्मानी कमजोरी में मुब्तला कर दिया था, ये सच है। बाइबल कहती है एक औरत ने उसके लिबास का एक किनारा छुआ था जिसकी वजह से उसे कमजोरी महसूस हुई। खैर, अगर एक रोया ने उसे यानी खुदा के बेटे को कमजोर कर दिया था, तो फिर मैं एक गुनाहगार क्या चीज हूँ जिसे फजल से निजात मिली है और एक रात में 30 रोयाएं देखने से क्या हाल हुआ होगा, समझे? ये अगर हम इस पर गौर करें तो ये चीज एक इंसान की पहुंच से बाहर है, इंसानी बदन इसकी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैं किसी पागल खाने की दीवार से टकरे मार रहा होता, समझे? ये ऐसी कमजोरी होती है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये बातनी कमजोरी होती है जो गोया आदमी को मार डालती है। फिर आप किसकी जानिब जाएंगे? मैं ये राय दे सकता हूँ, मैं यहाँ बाई कॉक्स और बहन कॉक्स और रोडनी और उसकी बीवी और बहन को यहाँ देख रहा हूँ। इन्होंने हाल ही में निजात पाई है, लेकिन दूर कहीं एक देश मौजूद है। काश आप कभी अपने ज़हनी ख्यालात से उसका नज़ारा कर सकते। वो सबसे ज्यादा जलाली चीज है और वो इस लायक है कि हम उसके लिए हर तरह की कोशिश करें, समझे। अब बीमारों के लिए दुआ करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आए इस बात को देखते हैं। अगर बच्चा पैदा होने से पहले, एक छोटा बच्चा जो 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहता है, अगर वो सोच सकता तो वो कहता, क्या आपको मालूम है? वो कहते हैं, तू जन्म लेने के लिए तैयार है। खैर, मैं बाहर आकर क्या करूँगा? मैं जहाँ रहता हूँ इस जगह के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे कुव्वत अंदर से मिलती है, फिर मैं वहाँ कैसे जिंदा रहूँगा? वो मुझे बता रहे हैं, बाहर एक चमकता हुआ सूरज है। वो कहते हैं बाहर की दुनिया में लोग चलते फिरते हैं, लेकिन मैं तो इस जगह के सिवा वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो बस ये जानता हूँ अपनी माँ के पेट में कैसे रहना है। मेरी परवरिश यही हुई है। मैं बस इस पेट के बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। देखें, इस तरह वो छोटा बच्चा जन्म लेने से बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाएगा। क्या ये सच है? वो मौत के खौफ में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसी जगह आ रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, जो कि बहुत बड़ी है, उससे लाखों गुना बड़ी है। जहाँ वो रहता है वो उसे समझ नहीं पाएगा वो क्या है। वो कहेगा, मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ? वो जन्म लेने की बजाय मौत के खौफ में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन हम जो आज बाहर की दुनिया में है, देखें, हम कभी वहाँ थे, लेकिन हम अब किसी भी तरह वापस जाना नहीं चाहेंगे। हम दोबारा माँ के पेट में जाना पसंद नहीं करेंगे, समझे। नहीं, देखें, हम ये कभी नहीं चाहेंगे। और जब हम मरने लगते हैं तो इसी तरह का मामला होता है दोस्तों। ओ खुदाया, समझे, आप एक जगह पर जन्म ले रहे हैं जहाँ आप कभी नहीं गए थे। आप उसे समझ नहीं सकते हैं वो कितनी बड़ी जगह है, और वहाँ बाहर की दुनिया में क्या क्या होगा। मैं एक ही चीज को मैं और आप महसूस कर सकते हैं, और वो जिंदगी का लम्स है, जैसे माँ के पेट में बच्चा रूह के दाखिल होने को महसूस करता है। देखे, बस यही एक तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि वो अजीम देश है। वहाँ बीमारी नहीं, वहाँ दुख नहीं, वहाँ मौत नहीं, वहाँ बड़ापा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओ मेरे खुदाया, देखें, अगर आप एक बार वहाँ चले गए तो दोबारा इस जगह वापस कभी नहीं आना चाहेंगे, जैसे एक बच्चा माँ के पेट में वापस जाना नहीं चाहता है, समझे। देखें, दूसरा जहान इतना ज्यादा अजीम है, हम इस बात को समझ नहीं सकते हैं। यकीनन हम इसे समझ नहीं सकते। देखें, जैसे वो छोटा बच्चा इसे समझ नहीं सकता है, वैसे ही हम समझ नहीं सकते हैं अगले जहान में क्या क्या होगा। देखें, क्योंकि हम भी जमीन के पेट में हैं, और किसी दिन नई दुनिया और नई बादशाही में पैदा हो जाएंगे। और इसी तरह मैं इन रोयाओं और बाकी बातों के बारे में महसूस करता हूँ, या जैसा मेरे साथ उस दिन हुआ जब मैं दूसरे जहान में चला गया था और देखा कि वहाँ क्या था, और फिर वापस यहाँ आ गया। क्या आप एक बच्चे की तरह सोच सकते हैं, ताकि आपको इल्म हो जाए कि वहाँ का चलना फिरना कैसा शानदार था। वहाँ फूल खिल रहे हैं और परिंदे गा रहे हैं और सूरज चमक रहा है। इस किस्म की जिंदगी है, और फिर आपको वापस माँ के पेट में जाना पड़े तो आप बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहेंगे। खैर, फिर हम उस पार एक मकाम पर ठहर जाएंगे और अपने जहन से सोचने लग जाएंगे कि उस पार क्या है, जबकि कलाम फरमाता है, जो आंखों ने ना देखा, कानों ने ना सुना, ना आदमी के दिल में आया, वो खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दिया, समझे। इसलिए हम जानते हैं दूसरा जहान जलाली है। एक दिन मौत, जिसे हम मौत कहते हैं, हमें एक नया जन्म देगी, फिर हम उस पार दूसरे जहान में चले जाएंगे। भाई जॉर्ज, आप वहाँ मफलूज या बूढ़े नहीं होंगे, और भाई स्पेंसर और बहन स्पेंसर और हमारी तरह के कुछ ज़हीफ लोग वहाँ सदा के लिए जवान हो जाएंगे। ये पुराना, ये गोश्त का बदन गिर जाएगा, और मैं जिंदा होकर एक अब्दी इनाम हासिल करूँगा, और हवा पर सफर करते हुए जोर से पुकारूंगा, अलविदा अलविदा दुआ के प्यारे लम्हे। फिर ये लम्हा खत्म हो जाएगा, फिर मजीद दुआ की लंबी रातें खत्म हो जाएंगी, और फिर हम वहाँ जवान और खुशहाल जहान में दाखिल हो जाएंगे। 1 साल या 50 साल या 10 लाख सालों के लिए नहीं, बल्कि हम वहाँ अरबों साल भी गुजार लेंगे, तो हमारी इब्तदा नहीं होगी। ये बात है। आज सुबह हम बहुत ज्यादा खुशी क्यों ना मनाएं? हम शादमानी क्यों ना करें? हम हर उस अजीम चीज से फायदा क्यों ना उठाएं जो खुदा ने हमें अता की है? इलाही शिफा यहाँ मौजूद है, यीशु ने क्यों मार खाई थी? क्या इस तस्वीर को फाड़कर कहने के लिए कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है? उसके बदन को मारा गया, उसकी पसलियां नजर आने लग गईं, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आएं, आज सुबह हम तस्वीर को ना फाड़ें, बल्कि इसे कबूल करें और इसे गले लगा लें। अब भाई, आप में से हर एक जो दुआ करवाना चाहता है, आप सब ऑल्टर के करीब आ जाएं। थोड़ी देर पहले जब गैर जुबानों में पैगाम दिया गया था, तो उसके तर्जमे में कहा गया था, हम बीमारों पर हाथ रखेंगे तो खुदा के बड़े बड़े कामों को देखेंगे। अब ये हमारा भाई उठ नहीं सकता है, ये भाई चार पाई पर पड़ा हुआ है, हम इसके पास आएंगे। और बाकी लोग जो दुआ करवाना चाहते हैं, आप यहाँ ऑल्टर के गिर्द इकट्ठे हो जाएं, जबकि मैं और भाई बीमारों पर हाथ रखकर दुआ करते हैं। आप अभी आएं और इस तस्वीर को गले लगा लें और इसे याद रखें, हमने यीशु के मार खाने से निजात पाई है। खुदावंद, ये बात मेरी समझ से बाहर है, यकीनन आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अभी तक जमीन के पेट में हैं। लेकिन उसने भी इसकी तैयारी की थी, और क्या वो नहीं लेकर जाएगा? उसने क्यों मार खाई थी? क्या तस्वीर को फाड़ने के लिए या गीत की धुन को खराब करने के लिए? जी नहीं, उसने मार खाई, वो घायल किया गया, उसका लहू बहाया गया, ताकि हम शिफा पाएं। और हम सब ने उसके मार खाने से शिफा पाई है, हम में से हर एक ने पाई है। इसलिए अब आप मस्बा के चौगिर्द दुआ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ अमेरिका में बहुत से सुपर डुपर बिशारती काम करने वाले कहते हैं, आप ये करें और आप वो करें। मेरे दोस्तों, मैं इस बात पर आपके साथ वफादार रहना चाहता हूँ, खुदा का शिफा देने का एक ही तरीका है, और वो उसकी खिदमत की बुनियाद पर है, समझे? उसकी खिदमत की बुनियाद पर है। हमें इस बुनियाद पर अपनी शिफा को हासिल करना पड़ेगा कि शिफा हासिल करने के बाद हम उसकी खिदमत करेंगे। अब कलाम फरमाता है, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो, ताकि शिफा पाओ, समझे? ये बुनियाद है कि आप खुदा की खिदमत करेंगे। और आप में से ज्यादातर यहाँ करीबुल मर्ग हैं, और अगर कुछ जाहिर ना हुआ तो आप मर जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप अपने दिल में ये, अब हम आपको तेल से मसा करके दुआ कर सकते हैं, और मैं और पास्टर आपके लिए ईमान से दुआ करेंगे, और जो कुछ हम कर सकते हैं करेंगे। लेकिन उस वक्त तक इसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आपकी रफाकत मसीह के साथ ना हो जाए, समझे? आपको उस रफाकत में आना है जिसमें मैं खुदावंद। अब मैं एक जवान औरत को आते हुए देख रहा हूँ, वो कुछ अरसा पहले ही घर आई है, और उसे ट्यूमर या हाजकिन की बीमारी है, और वो मेथोडिस्ट ईमान के साथ मुंसलिक है। मेरा ईमान है ये सच है, बहन क्या ये सच नहीं? इसके पहलू में एक बड़ी गिल्टी थी, लेकिन अब ये शिफा पा चुकी है। मैं यहाँ बहन वीवर को खड़ा देख रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कैंसर की जितनी बुरी इकसाम देखी है, उनमें से एक ने इसको पकड़ा हुआ था, और सबसे पहली बात जो मैंने इससे कही थी वो ये थी कि अपने गुनाहों का इकरार करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। जब मैं इसे पानी में लेकर गया तो ये इतनी कमजोर थी कि मुझे इसे संभालना पड़ा, इसकी बाहें बहुत ज्यादा कमजोर थी, और वगैरह वगैरह। इसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, और इस बात को 10 बरस हो चुके हैं, क्या ऐसा नहीं है बहन जी? 16 बरस हो चुके हैं, इसकी निजात को 16 बरस हो चुके हैं, क्योंकि इसने ताबेदारी की थी। हालांकि सबसे अच्छे डॉक्टरों ने, देखें, इसके अपने डॉक्टर ने मुझे बताया था, देखें, मैंने उसे बताया और कहा वो शिफा पा चुकी है, कहा हो कैंसर की वजह से ये कुछ हफ्तों में मर जाएगी, इसके लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मर जाएगी, कुछ हफ्तों बाद ये इंतकाल कर जाएगी। वो पहले ही इसे जीने के लिए एक दिन दे चुका था, और ये आज 16 बरस बाद भी यहाँ ऑल्टर पर खड़ी हुई है। मैं और क्या कह सकता हूँ, बार बार और बार बार ऐसा होता है। अब ये मुमकिन नहीं कि खुदा अपने एक बच्चे के लिए ये करे और दूसरे के लिए ना करे, वो अपने तमाम बच्चों के लिए इसी तरह करता है। जो कोई भी मेरे पास आएगा, ये है, वो आपको मधु कर रहा है, अब ईमान से की गई दुआ से बीमार बच जाएगा, कलाम यूं फरमाता है। अब अगर मैं चाहता हूँ आप खुदा के सामने अपनी खताओं का इकरार करें और कहें, खुदावंद मुझे शिफा दे, अगर आपने निजात नहीं पाई तो अपना दिल मसीह को दे दें, और अगर आपने पहले कभी यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो फिर हाउस तैयार है, समझे? और ये औरत गली के पार रहती थी, और इसके वसीले एक काफिर ईमान ले आया था। जब ये मर रही थी तो उन्होंने इसे सिल्वर क्रिस्ट से घर भेज दिया था और टीबी से मर रही थी। और जब मैं वहाँ गया तो खुदावन ने मुझे रोया दिखाई और कहा ये शिफा याब हो जाएगी। और अगली सुबह मिस्टर एंड्रयू मुझसे मिला और बुलंद आवाज से मुझे पुकारा और कहा इस औरत के बारे में आपकी उम्मीद झूठी है। मैंने कहा मिस्टर एंड्रयू ये उम्मीद झूठी नहीं है, ये औरत क्रिश्चियन है और जब ये ठीक हो जाएगी तो ये खुद बपतिस्मा लेने आएगी। और उसने कहा ये मर रही है। कहा मैं ये सिल्वर क्रिस से घर कैसे जाएगी। मैंने कहा सर आप उस बात को देख रहे हैं, आप उस बात को देख रहे हैं जो बात डॉक्टर ने कही है, मैं उस बात को देख रहा हूँ जो खुदा ने कही है, समझे। अब आपके देखने में ये फर्क है, समझे। अगर आप डॉक्टर की बात को देखेंगे तो आप जरूर मरेंगे, लेकिन आप वो देखें जो खुदा ने कहा है। आप किसकी बात को लेने जा रहे हैं? क्या होता अगर इब्राहिम डॉक्टर की बात को लेता कि वो 100 साल का था और 90 साल की बीवी से बच्चे की उम्मीद कर रहा था, फिर वो क्या करता? देखें, डॉक्टर उससे कहता तू पागल हो गया है, लेकिन उसने खुदा पर ईमान रखा और खुदा ने उसे रास्तबाजी में शुमार किया, समझे। अब आप और ये औरत जिंदा रही, लेकिन इसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरा ख्याल है ये मेथोडिस्ट या शायद प्रेस्बिटेरियन थी और ये ज्यादा बीमार होना शुरू हो गई और इसने ग्रेस वेबर को लिया जो उसके साथ रहती थी, या ये उसके साथ थी। इसकी बेटी ने इसे लिबास पहनाया और यहाँ ले आई और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और बुखार में इसके कंधों पर बीमारी के उबार पैदा हो गए थे और वगैरह वगैरह। और उस वक्त इसे 104 बुखार था। इसे ठीक यहाँ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया था और ये यहाँ से अगली गली में रहती है और इस वक्त यहाँ मौजूद है। इधर उधर देखें, मैंने थोड़ी देर पहले इसे यहाँ देखा था, समझे। ये ताबेदारी है, आप देखें, ये फजूल अमल नहीं है। मैं अपने कुछ भाइयों से इख्तलाफ रखता हूँ, वो लोगों पर इधर उधर हाथ रखते हैं और कहते हैं ये काम बहुत बड़े ईमान से होगा। ये बात नहीं है, आपको हकीकी मजबूत बाइबल और पाक रू का ईमान चाहिए, समझे। अगर ऐसा नहीं है तो इससे काम नहीं चलेगा, ये मजबूत नहीं है। इसके लिए मैं खुदावंत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अब तक मेरी मदद की है। जब कभी भी शिफा नाजिल हुई है, असली शिफा हुई है, क्योंकि ये पूरी तरह से खुदावंत यूं फरमाता है की बुनियाद पर होती है, समझे। इसलिए लोग कायम रहेंगे। अब ये एक छोटा संडे स्कूल है और मैं इंतजार कर रहा था और आपसे बातचीत कर रहा था। अब आप अपनी अपनी जगह संभाल लें और खामोशी इख्तियार करें, हम कुछ मिनट और लेंगे, फिर हम दुआ का आगाज कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ आप सब खुदा के सामने अपनी गलतियों का इकरार करें और उससे वादा करें आप उसकी खिदमत करेंगे और जो कुछ आप कर सकते हैं करेंगे। मैं और पास्टर आप पर हाथ रखकर दुआ करने आ रहे हैं और अगर आप ईमान रखेंगे तो शिफा पा जाएंगे। कितने लोग बैसाखियों पर थे, बहरे, अंधे और गूंगे थे। पिछले इतवार की दोपहर वो ऑल्टर के करीब आए तो उन्होंने बैसाखियां फेंक दी थी। ऑल्टर पर आते ही आंखें खुल गई थी। क्या आपको मालूम है उनमें से हजारों गुजरे, यहाँ तक कि मैं बहुत कमजोर हो गया था। उन्होंने मुझे ऐसी जगह फंसा दिया था, बस खड़ा रहा और वो गुजरते रहे, समझे। इतनी लंबी कतार थी जो यहाँ से तकरीबन जेफरसन व्हील के हाई स्कूल तक पहुँच गई थी। वो कतार में आते जा रहे थे और मेरा नहीं ख्याल कोई शिफा के बगैर गया होगा, समझे, क्योंकि वो असल हकीकी मसीही ईमान की बुनियाद पर आ रहे थे। वो ऐसा होता है। अब तमाम लोग सरों को झुका लें और इनके लिए दुआ में मेरी मदद करें। खुदावंद यीशु, आज सुबह सामीन में से इन बीमारों और परेशान और मुसीबत में फंसे हुए बच्चों को तेरे पास लाते हैं। इनकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। खुदावंद इनमें से ज्यादातर डॉक्टर के इलाज के बाद यहाँ आए हैं, खासकर ये आदमी जो चारपाई पर पड़ा हुआ है। ये तेरे फजल के वसीले ना बचा तो कुछ ही दिनों में ये दुनिया से चला जाएगा। और बेशक ऑल्टर के पास ऐसे लोग भी खड़े हैं जिनके लिए दिल के दौरे और बीमारियां और परेशानियां इंतजार कर रही हैं, जो इन्हें बर्बाद कर देंगी। ऐ बाप, बस एक ही चीज इन्हें बचा सकती है, बस बदन के 5 हवास से ये बाहर निकल आए। बेशक डॉक्टर ने इन्हें बीमारियों, कैंसर और टीबी और दिल की तकलीफ से बचाने की पूरी कोशिश की है और मरहम पट्टी, ट्यूब, जरासीम कश और बाकी दवाइयों के बावजूद इनकी जान लेने के लिए दुश्मन का एक लश्कर इनके अंदर दाखिल हो चुका है। और मेरा ईमान है खुदावंद, मैंने तेरी बात इनके सामने पेश कर दी है। और मैंने आज सुबह एक आदमी को सुना था, उसने गैर जुबान में पैगाम दिया था और उसका तर्जमा किया गया था। कि आज सुबह क्या होने वाला है। खुदावंद यकीनन इनमें से कुछ इसे हासिल करेंगे, ये दुरुस्त है, मैं पुर यकीन हूँ। और देखें, बाइबल में लिखा है, दाऊद एक छोटा लड़का चरवाहा था जो जंगल में अपने बाप की भेड़े चराता था। एक दिन एक शेर उसके बाप के बरों में से एक को उठाकर ले गया। उस छोटे चरवाहे ने ईमान के साथ उस शेर का मुकाबला कैसे किया था? उसके पास कोई जदीद असला या बंदूक नहीं थी, उसके पास एक छोटी सी फलाखन थी। वो उसी के साथ शेर के पीछे चला गया, उसने शेर को हला कर दिया और बरा वापस ले आया। फिर एक दिन एक रीछ ने उसका एक और जानवर उठा लिया। वो उस रीछ को फाड़ने के लिए उसके पीछे उस जमीन पर चला गया, लेकिन इसने रीछ के साइज के बारे में नहीं सोचा था, या शेर की ताकत या उसकी तेज रफ्तारी की परवाह ना की, और ना ही फलाखन में अपने तजर्बे की परवाह की। और जब वो सऊल बादशाह के सामने खड़ा था तो उसने कहा, तेरा खादम अपने बाप की भेड़े चराता था और एक शेर एक बरे को उठाकर ले गया था। मैंने उसका पीछा किया और भेड़ को छुड़ाकर वापस ले आया। उसने कहा, वही खुदा जिसने मुझे रीछ के शिकंजे या उसके पंजे से और शेर के मुंह से बचाया, वही मुझे इस नामख्तून फलस्ती के हाथ से बचाएगा और इसे मेरे हाथ में कर देगा। और ये कहानी हमें मालूम है, उसने उस आदमी को हलाक कर दिया, और जिस आदमी को उसने हलाक किया वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा था और जंगजू था। इस बात से सऊल बादशाह जैसे मजबूत और अजीम शख्स को ठोकर लगी कि इस छोटे लड़के का खुदा पर इतना बड़ा ईमान है। नहीं, फलाखन पर नहीं बल्कि खुदा पर था। अब खुदावंद इस ऑल्टर के पास खड़े हुए लोग और इस चारपाई पर पड़ा हुआ आदमी खुदा की बेड़े हैं, ये उसके लिए छोटे बरे हैं। इन्हें कैंसर के बब्बर शेर और टीबी के रीछ ने पकड़ लिया है, और बीमारियां इन्हें घुमा घुमा कर टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। खुदावंद, मैं एक छोटी सी फलाखन जिसका नाम ईमान की दुआ है लेकर इनके पीछे जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ इससे क्या क्या हुआ है। मैं जानता हूँ आज भी वही खुदा है, और मैं इन्हें वापस लाने के लिए आज सुबह इनके पीछे जा रहा हूँ खुदावंद, ताकि इन्हें तंदुरुस्ती के सब्जा में और सलामती के राहत के चश्मों के पास ले जाऊँ, ताकि ये इस मुसीबत से निकलकर तुझ पर ईमान रखें। और मैं उस हथियार के साथ जो तूने मुझे दिया है इनके पीछे जा रहा हूँ। जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने कोई गुनाह किया हो तो उसकी माफी भी मिल जाएगी। और ऐ बाप, अब हम दुश्मन के मुकाबले के लिए आगे बढ़ते हैं, शेर बब्बर के मुकाबले के लिए, अबलीस के मुकाबले के लिए, चाहे वो कैंसर की शक्ल में हो या टीबी की या हाजकिन बीमारी की या दिल की तकलीफ या किसी भी बीमारी की शक्ल में हो, हम आ रहे हैं बरे को छुड़ाने के लिए और वापस खुदा के घर में लाने के लिए। हम यीशु मसीह के उस फलाखन को इस्तेमाल करने आ रहे हैं जो तूने हमें दी है। ऐ बाप, हमारा साथ दे, और अब हम यीशु के नाम में बड़े एहतराम के साथ तेरी हजूरी में आते हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने सर झुकाए रखें। हम बीमारों पर हाथ रखने और तेल से मसा करने आ रहे हैं, और ईमान से की गई दुआ से बीमार बच जाएगा। हर एक मसीही जो यहाँ मौजूद है अपना ईमान इस दुआया कतार में इस्तेमाल करे। Thank you. अब अपने सरों को झुका लें। अब अब आए अपने हाथों को उठाएं। हमारे आसमानी बाप, जो लोग खड़े हो सकते थे, इन्होंने हाथ बुलंद करके दिखा दिया है कि ये इसे कबूल करते हैं। ये भाई जो चारपाई पे पड़ा था, वो ये दिखाने के लिए उठ खड़ा हुआ है कि उसने अपनी शिफा को कबूल कर लिया है। खुदावंद, हमारा ईमान है कि ये अब सलामती के सब्जे के पास और राहत के चश्मों के पास अपनी सेहत के लिए चल कर आ रहे हैं, ताकि यीशु के नाम में ये ठीक हो जाए। हम इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, आमीन। ठीक है भाई नेविल, अब मैं यहाँ बैठकर आपकी मुनादी सुनूंगा।